اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زیارت عراق کے حوالے سے اب تک ہماری دو نشستیں مکمل ہوئیں. پہلی نشست میں فضائل زیارت کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور دوسری نشست میں آداب زیارت اور دوسری نشست میں ان احتیاطوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کا حق کما حق ہوں ادا ہو. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو مرحلہ وار ہر مقامات مقدسہ کی طرف لے کے جائیں گے اور گھر بیٹھے یا مدرسے میں بیٹھ کر وہ روحانی سفر انشاءاللہ کروائیں گے کہ جس کو کرنے کے بعد ہم اور آپ تزکیہ نفس سے دو چار ہوں گے اور تقرب الہی سے بھی. چنانچہ آج ہم عملی طور پر زیارت کا سفر شروع کر رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے ٹکٹ کٹا لیا نجف کا اور آج ہم نجف کی طرف رواں دواں ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ جب ہم کسی جگہ کا قصد کرتے ہیں, کسی شخص سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں, کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ضروری ہے کہ اس چیز کی, اس شخص کی, اس مقام کی اہمیت, فضیلت آپ کے ذہن میں ہو تاکہ آپ جب اس کو دیکھیں, اس سے ملیں یا اس کی زیارت کریں تو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, کیا سن رہا ہوں, کیا سمجھ رہا ہوں اور کیا کسب کر رہا ہوں. چنانچہ جب ہم نجف کی طرف جائیں گے تو نجف کی طرف جانے سے پہلے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر مقام کی معرفت ضروری ہے. معرفت کے بغیر اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ میرے سامنے کیا ہے اور جیسے گئے تھے کورے ویسے ہی واپس آئیں گے. چنانچہ نجف جانے سے پہلے ضروری ہے کہ نجف کی اہمیت آپ کے سامنے ہو. پھر نجف نام یا اس کے متبادل جتنے بھی نام ہیں ان کا کیا پس منظر, کیا معنی ہیں. تاریخ نجف بھی ضروری ہے جاننا کہ نجف کن مراحل سے گزر کر موجودہ شکل میں ہمارے سامنے آیا. پھر فضائل نجف, کیا مولا علی نے فقط ایسے ہی اس مقام کو منتخب کر لیا تھا, کیا واقعی اس کے اندر کوئی ایسی خوبی تھی کہ مولا نے اس مقام کو اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر منتخب کیا. پھر خود مولا کی مرقد مبارک, قبر مبارک یعنی حرم مطہر کی مختصر تاریخ, کتنے لوگوں نے, کن لوگوں نے, کن گروہوں نے اس میں حصہ لیا. پھر مولا علی کی خود زیارت کیوں اہم ہے اور اس کا ثواب کیا ہے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہو جائیں گی تو مولا کی زیارت کرنا اور اس سے کسب کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. ہمارا جو ہدف ہے, ہم نے پہلے بھی بتایا کہ زیارت کا ہدف فقط یہ نہیں ہے کہ ہم زری کو دیکھ کے آ جائیں یا جو ہے روزے کو چوم کے آ جائیں. ہمارا مقصد ہے کہ اس سے کچھ کسب کریں, اپنے گناہوں کو بخشوا کر آئیں اور پاک و پاکیزہ اور بالکل ایک نئی شخصیت کا روپ دھار کر اپنے گھر لوٹیں. سب سے پہلے اہمیت نجف. دیکھیں اس وقت جو نجف کی, موجودہ نجف کی اہمیت ہے وہ سہ رخی ہے. تین حوالے سے امپورٹنٹ ہے اس وقت نجف. اولین اہمیت بلا شبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ کی آخری آرام گاہ کے طور پہ ہے. مولا علی کی قبر مبارک وہاں نہ ہوتی تو نجف نجف نہ ہوتا, شاید ہم میں سے کئی لوگ نجف کو جانتے بھی نہ. मौला अली ने जब वहाँ पे दफन होने का इरादा किया, जब वहाँ उनकी तदफीन हुई, जब वहाँ उनके मज़ार मुबारक बना, हरम बना, तो फिर उस शहर की अहमियत हो गई। उससे पहले नजफ़ को कोई नहीं जानता था। इसी तरह हम देखते हैं कि मदीने को रसूलुल्लाह के आने से पहले कोई नहीं जानता था, फ़कत यसरब था मदीनतुन्नबी हो गया। करबला को मौला हुसैन के आने से पहले कोई नहीं जानता था, जब वो आए तो करबला मौला हो गया। इस तरह नजफ़ था फ़कत, और जब मौला की वहाँ तदफीन हुई, आखिरी आरामगाह करार पाई, तो वो नजफ़े अशरफ बन गया। तो सबसे पहली, सबसे अहम वजह नजफ़े अशरफ के मुशर्रफ होने की, अहम होने की और मशहूर होने की, ख़ुद मौला अली की आरामगाह है। दूसरी एक अहम वजह हौज़ा इल्मिया, जो कि पहली वजह से मरबूत है। अगर मौला अली की वहाँ पे आखिरी आरामगाह ना होती तो शायद हौज़ा इल्मिया नजफ़ भी ना होता, लेकिन ख़ुद हौज़ा इल्मिया एक अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और उस नजफ़े अशरफ को चार चांद लगा रहा है। देखा जाए तो नजफ़े अशरफ का हौज़ा कुम से पहले बना, नंबर एक। नंबर दो, इस वक्त कुम का मौजूदा मदरसा हौज़ा इल्मिया बज़ाते ख़ुद नजफ़ का मरहून मिन्नत है, यानी वहाँ जितने भी मुज्तहिदीन मराजईन हैं वो नजफ़ ही से होकर आए हैं। जब नजफ़ का हौज़ा उजड़ा था तो वहाँ से लोगों ने हिजरत की थी और कुम गए थे, और फिर कुम से फिर वापस भी आके लोगों ने इसकी खिदमत की। इस वक्त भी हौज़ा इल्मिया कुम के जितने भी मुज्तहिदीन मराजईन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयतुल्लाह खोई के शागिर्द माने जाते हैं, जो कि हौज़ा इल्मिया नजफ़ के रिहायशी थे और यहाँ पर वो दरस तदरीस और दरस खारिज दिया करते थे। इस वक्त हौज़ा इल्मिया नजफ़ यूँ समझ लीजिए एक अपनी दूसरी ज़िंदगी पा रहा है, उजड़ने के बाद दोबारा इसको ज़िंदगी मिली है, और अब यूँ समझ लीजिए वो अपने जोबन पे आ रहा है और अपनी पीक पे जा रहा है। इसके बाद जो अहम तरीन वजह है नजफ़े अशरफ की इस वक्त मशहूर होने की, वो है आलमी सियासत का मरकज़। जो लोग सियासत से दिलचस्पी रखते हैं वो जानते होंगे कि आए दिन नजफ़े अशरफ सियासत की ख़बरों का मरकज़ व महवर बनता रहता है। क्यों? कि ख़ुद इराक मरकज़ ख़बर है, चुनाचा इराक में मौजूद वो शख्सियात जो इराक की सियासत माशरत पे असर डालती हैं उनसे मिलाना ज़रूरी है। तो चाहे वो यूएनओ के बांकी मोर हों या फिर यूके या यूएसए के प्रेसिडेंट या मिनिस्टर्स हों, हर कोई इस कोशिश में रहता है कि किसी तरह आयतुल्लाह नुज़मा अली सिस्तानी या दीगर मराजईन से रवाबित रखे जाएं, ताकि इनके मिजाज और तबीयत को समझते हुए इराक से मुतालिक अपनी पॉलिसी को तरतीब दिया जाए और उसके बाद इराक में कोई इकदाम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल्लाह सिस्तानी की रहनुमाई में और दीगर मराजईन के टीम वर्क की वजह से बदस्तूर रोज़ बरोज़ माशाअल्लाह कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, दुनियाए तशय्यो को तकवियत मिल रही है, और इराक़ की बदौलत पूरी दुनिया में तशय्यो को एक इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है। तो ये सहरुखी अहमियत है इराक़ की, सहरुखी अहमियत है नजफ़ की, कि जिसकी वजह से इस वक्त नजफ़े अशरफ जो है पूरी दुनिया में एक मशहूर मारूफ शहर है। जैसे हमने बताया कि जब आप किसी चीज़, किसी शख्स या किसी जगह को देखते हैं, सुनते हैं उसके बारे में, तो पहली चीज़ जिससे आपका सामना होता है वो उसका नाम है। अगर मतलब किसी शख्स से मिलना है तो उसका नाम आपके जहन में पहले आएगा, फिर बाकी उसके खसाइस, इसी तरह जगह, इसी तरह चीज़। तो जब हम नाम को समझ लें तो बहुत सारे मसाइल मुकदमाती तौर पे, बहुत सारी तशरीहात मुकदमाती तौर पे हल हो जाती हैं। यानी नजफ़ क्यों नजफ़ कहलाता है या इसके जो दीगर नाम हैं उनकी वजूहात पस मंज़र क्या है, अगर वो जान जाएँ तो इंशाल्लाह नजफ़ के हवाले से काफ़ी मालूमात आपको मिल जाए। और फिर नजफ़ के मिजाज को, नजफ़ की तारीख़ को, नजफ़ के मौजूदा हालात को समझने में आपको चंदा दुश्वारी नहीं होगी। ख़ुद नजफ़ के अलावा नजफ़ के 14 नाम हैं, नजफ़ के अलावा ख़ुद नजफ़ के 14 से ज़्यादा नाम मरकूज मस्कूर और मनकूल हैं किताबों में। आइए देखते हैं इन नामों के बैकग्राउंड, कैसे मंजर, माना और तशरीहात क्या हैं। ख़ुद पहले नजफ़ को हम ले लेते हैं। नजफ़ एक कंपाउंड वर्ड है, मुरक्कब लफ्ज़ है, जो कि बना है नी और जफ़ से। नी उस दरिया का नाम था कि जो नजफ़ में कभी बहा करता था, लेकिन बाद में वो खुश्क हो गया। जब वो खुश्क हो गया तो लोग अक्सर इस तरह उसको याद किया करते थे कि नी जो जफ हो गया, दरियाए नी जो खुश्क हो गया। तो नी जफ नाम पुकारा जाने लगा उस दरिया का, और आहिस्ता आहिस्ता वो नजफ बन गया। नजफ एक और हवाले से कहा जाता है, मंजूफ से निकला है। मंजूफ का मुतबादल लफ्ज़ उर्दू में टीला है, टीला या संडियोन, के जो थोड़ा सा सतह मुर्तफा पे वाक़ होता है, बुलंदी पे वाक़ होता है। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ सतह ज़मीन से ऊपर हो वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता। अगर उसके आसपास पानी जमा होगा तो वो टीले पे नहीं पहुँच सकेगा। मतलब बारिश होगी, आपने देखा होगा आपके घर की जो मुंडेर होती है उस पर पानी नहीं आता, सड़क पर होता है। तो मंजूफ सतह मुर्तफा, बुलंद जगह, प्लेटू, इस जगह, इस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पर पानी पहुँच ना सके। तो नजफ अभी भी और पहले भी समंदर से 70 मीटर बुलंद है। अगर हम 3 मीटर की एक मंजिला इमारत मान लें तो ये कितनी मंजिला इमारत बन जाएंगी? 20 मंजिला से ऊपर, सतह समंदर से नजफ 20 मंजिला ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे दरिया आता है, पानी आता है, तो वो नजफ़ के ऊपर नहीं आ पाएगा। तो मंजूफ कहते हैं एक ऐसे टीले, एक ऐसे चबूतरे को, एक ऐसी सतह मुर्तफा को जो ज़मीन से बुलंद हो और जहाँ पे पानी ना पहुँच सके। तो जब भी पानी यहाँ पर आता, बारिश होती मसलन, या दरिया का फुरात का रुख, या उससे कोई नहर ली जाती और इस तरफ छोड़ी जाती, तो वो आसपास रहती लेकिन नजफ़ शहर के ऊपर नहीं आ पाती, इसलिए इसको नजफ़ कहा जाता है। ये एक नाम हो गया नजफ़ का, बैकग्राउंड दो हवाले से, नाम एक नजफ़। नजफ़ के एक नाम है मशहद। मशहद कहते हैं ग्रोह, मजमे को। ईरान में मशहद भी इसी नाम से है, और वो मशहद मुक़द्दस इमाम अली रज़ा है। ये मशहद मुक़द्दस अल्लाहुम्मा सल्ली अला हालांकि यहाँ पे तो इसका नाम मशहद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ज़माने में नजफ़ जो है बिल्कुल वीरान और बंजर ज़मीन थी। मौला की कब्र के इनकशाफ से पहले कोई इस जगह को नहीं जानता था, लेकिन अब देखें 60 लाख यानी 6 मिलियन से ज़्यादा इसकी जो है वो आबादी तजावुज़ कर चुकी है। कोई यकीन नहीं कर सकता होगा उस ज़माने में जब इसका नामो निशान नहीं था, एक बंजर ज़मीन थी, और मौला की कब्र का इंकशाफ वहाँ पर नहीं हुआ था, या उससे पहले, कि एक ज़माना ऐसा आएगा जहाँ जब इस शहर की आबादी इतनी हो जाएगी। पूरा एक सूबा है इराक़ का भी है, लेकिन उस ज़माने से इसका नाम जो है वो मशहद मशहद जो है वो चला आ रहा है। गरी या गरा इसका एक नाम है, और अरबी में गरी या गरा को हम कहते हैं हसास या नेक आदमी, जो बहुत जल्दी माइंड कर जाता हो, सेंसिटिव हो, गुनाह के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता हो, ऐसे शख्स को जो है वो गरी कहा जाता है। इसी तरह इसी से एक लफ्ज़ निकला है गरवी। गरवी दुबला पतला या दुबली पतली चीज़ या तंग जगह। असल में नजफ जो है वो रेक्टेंगुलर शेप, मुस्ततिल शेप की जगह है, और वो एलोंगेटेड है, कोई फैली हुई जगह नहीं है। जैसे आपका मोबाइल होता है यूँ समझ लीजिए, इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप की जगह है, और वो सतह ज़मीन से उठी हुई है। तो वो एक तंग राहदारी, एक कॉरिडोर समझ लें, इसलिए उसको गरवी कहा जाता है। अच्छा, इसके नाम जूदी है क्योंकि यहाँ पर कोहे जूदी था। कौन सा कोहे जूदी? वो पहाड़ जिस पर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे कनान ने चढ़कर अपने जाम में कहा था, काला साबी एला जबली या सिमोनी मिनलमा, कि मैंने पहाड़ पे पनाह ले ली है जो मुझे इस पानी यानी तूफान से बचा लेगा। سورہ رعد آیت نمبر 43. اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ بات سنی, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے تو اس نے یہ جواب دیا. قرآن نے اس کا جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے خدا نے. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ جودی سے کہا کہ میرا ایک نافرمان بندہ مجھ سے فرار ہو گیا ہے اور تیرے پاس پناہ لینا چاہتا ہے, تو کیا تو اسے پناہ دے گا؟ یہ سن کر کوہ جودی پہ لرزاں تاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا اور شرم سے ہیبت سے پاش پاش ہو گیا. جودی یعنی اپنے علاقے نجف سے لے کر شام تک زمین میں دھس گیا اور اس کے بعد وہ نہیں ابھر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا. اب وہاں پر یعنی نجف سے لے کر شام تک کے علاقے میں کوئی پہاڑ نہیں, کیونکہ پہلے پہاڑ تھا جو خدا کے اس کلام سے, اس سزا دینے والے انداز سے کہ کیا تم ایسا کرو گے, تو وہ فوراً جو ہے خوف سے پھٹ گیا. اس لیے اس جگہ کو جو ہے وہ جودی بھی کہا جاتا ہے. اچھا, یہ ہمارے لیے بھی ایک درس عبرت ہے کہ کیا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسی آواز ہمارے دل سے اٹھتی ہے؟ اور اگر دل سے اٹھتی ہے یا ہمارا ضمیر جو ہے ہمیں کچوکے لگاتا ہے اور ہمیں جگاتا ہے, تو کیا ہم اس خوف سے کانپنے اور لرزہ بندام ہو جاتے ہیں؟ جبکہ ایک پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات سے, ہاتف غیبی سے جو ہے وہ لرزہ بندام ہو گیا. طور, کوہ طور بھی اسی جگہ پر ہے. حرم سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے واکنگ ڈسٹنس پہ, اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا, اور یہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب دیا. اس کا ایک نام ظہور بھی ہے جو ظہر سے نکلا ہے. ظہور کا مطلب ہوتا ہے پشت. ظہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے, ایک ظاہری اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے. اصل میں نجف کوفے سے ہٹ کر آگے کی طرف پشت کوفہ پہ واقع ہے. پہلے زمانے میں نجف الگ سے ایک جگہ یا شہر یا علاقہ نہیں مانا جاتا تھا, یہ کوفے کا حصہ مانا جاتا تھا. زیادہ سے زیادہ اس کو پشت کوفہ کہہ دیا جاتا تھا. جب بھی اس کا نام آتا تو لوگ کہتے پشت کوفہ, یعنی کوفہ کے پچھواڑا, کوفے کے پیچھے. اور روایتوں میں بھی کئی جگہوں پہ پشت کوفہ کا نام آیا ہے. تو پشت کوفہ کی وجہ سے اس کا نام ایک ظہور بھی ہے, اور یہ ظہور سے نکلا ہے. اور یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھ, جیسے بھی اپنے نام میں بتایا, یہ شیپ یاد رکھیں, اس کی ریکٹینگولر شیپ ہے اور ابھری بھی ہے. تو ریکٹینگولر شیپ ابھری بھی ہو تو لگتا ہے کہ کسی کی پیٹ ہے یا کسی کا کمبھ نکلا ہوا پیچھے سے. تو کوفہ ایک سر سمجھ لیجیے آپ, اور اس کے بعد اس کا ظہر, اس کا ظاہری یا پیٹھ والا حصہ, اس لیے اس کو ظہور بھی کہتے ہیں. ربوہ تنگ جگہ کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو سانس کی بیماری ہوتی ہے جسے دمہ کہتے ہیں انگلش میں, جس کو ایزما کہتے ہیں, اس میں سانس کی نالی ٹریکیا اور برونکائے تنگ ہو جاتے ہیں, اس سے سیٹی جیسی آواز بھی نکلتی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں ربو, انگلش میں کہتے ہیں ایزما, اردو میں کہتے ہیں دمہ. تو اسی حوالے سے اس کا نام ربوہ ہے, کیونکہ یہ جگہ تنگ ہے اور الانگیٹڈ ہے, تھوڑی سی طولانی ہے, ٹیوب شکل کی آپ جسے کہتے ہیں, اس وجہ سے اس کا نام ربوہ ہے. ایک ویسے ربوہ لاہور کے قریب بھی ہے جو قادیانیوں کا مرکز ہے. بہرحال یہاں پہ ربوہ کہنے کی جگہ تنگ ہونا اور الانگیٹڈ طویل ہونا. ایک اس کا نام ہے بانقیہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ اور پس منظر ایک کہانی لیا ہوا, واقعہ اپنے اندر لیے ہوئے نام ہے. بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے زمانے میں اس نجف اشرف سے گزرے. اچھا, اس زمانے میں نجف اشرف میں زلزلے بہت آیا کرتے تھے. جب اچھا, اس نہج کے نہیں تھے جس نہج کے بہت زیادہ شدت کے ریکٹر اسکیل جسے کہتے ہیں 8 ہوتا یا 7 ہوتا, لیکن بہرحال آتے تھے. زلزلہ کسی بھی نوعیت کا ہو, کسی بھی شدت کا ہو, آدمی گھبرا جاتا ہے. ابھی کراچی میں بھی گلشن کے علاقے میں زلزلے آئے تھے, جھٹکے محسوس ہوئے تھے, تو بہت جھٹکے آتے تھے. تو ایک رات زلزلہ نہیں آیا, لوگ بڑے حیران اور خوش ہوئے کہ آج زلزلہ نہیں آیا. تو بھاگے بھاگے گھروں سے نکلے, دیکھیں تو کیا وجہ ہے, پتہ چلا کہ ایک بزرگ اپنے غلاموں کے ساتھ سکونت اختیار کیے ہوئے شہر میں. ان کو شک ہوا کہ شاید ان کی وجہ سے, شاید ان کی وجہ سے نہیں. ان کے پاس گئے اور کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آج رات ایک اور مہمانداری کا, ایک رات اور ہمیں شرف بخشے, آج رات آپ یہاں رہے. مطلب کنفرم کرنا چاہ رہے تھے وہ کہ ان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के साथ दोबारा दूसरी रात वहीं ठहरे, दूसरे दिन भी जलजला नहीं आया। वो समझ गए इस बाबरकत हस्ती की वजह से नजफ़ में जलजला नहीं आया। चुनांचा वो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे लिए तो मुमकिन नहीं, मुझे तो आगे जाना है, फ़लस्तीन जा रहे थे गालिबन वो। तो उन्होंने कहा कि बहुत इसरार किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा देखो मैं ये ज़मीन ख़रीद लेता हूँ, जब ये ज़मीन मेरी मिल्कियत हो जाएगी तो मैं रहूँ या ना रहूँ, मिल्कियत होने के सबब इंशाल्लाह जलजला नहीं आएगा। उन्होंने कहा मिल्कियत की और ख़रीदो फरोख्त की क्या बात, हम आपको वैसे ही हिबा कर देते, तोहफे में दे देते। उन्होंने कहा नहीं मैं ख़रीदूँगा। देखिए ये बड़े लोगों का बड़ापन है, अम्बिया का, मासूमीन का, कि उनको मालूम होता है कि यहाँ हमारा मकतल बनेगा, हमारे सर कटेंगे, फिर भी वो जगह ख़रीदते थे और फिर जो वो हिबा किया करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जगह ख़रीदी और कितनी पैसों की, उस ज़माने में पैसों वगैरह का हिसाब नहीं था, तो 7 भेड़े और 4 गधे। अच्छा ये सुन के मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, उस ज़माने में 7 भेड़े मर्सिडीज़ समझ लें और 4 गधे आप छोटा करोड़ा समझ लें। तो ये मिल मिला के जो है वो करोड़ के करीब पहुंच जाता है। तो करोड़ में माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह आ सकती है। इस पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने कहा कि आप क्यों ये गधे और भेड़े ज़ाया कर रहे हैं, ये तो बंजर ज़मीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बंजर ज़मीन मक्के को भी इख्तियार किया था, फिर वहाँ देखें क्या माशाल्लाह सरसब्ज व शादाबी आई और क्या जो है वो इस वक्त बिजनेस में और टूरिंग में आगे जा रहा है कि फ़कत हज और उम्रे की आमदनी जो है वो अब काफ़ी हो रही है, पेट्रोल को हद लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोचा जा रहा है कि इसको किस तरह मज़ीद प्रॉफिटेबल बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनको ग़ुलाम ने कहा कि आप क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं इस बंजर ज़मीन पर। देखिए ये फ़र्क होता है एक आम आदमी में एक मासूम की नज़र में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा खामोश हो जाओ, तुम्हें नहीं मालूम इस सरजमीन से 70,000 अफराद रोज़े महशर महशूर होंगे और बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे और दुरूद तो आपको अब पढ़ना चाहिए, और 70,000 अफराद बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे और इतने ही हर एक इतने ही अफराद को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। तो इस फजीलत के सबब उन्होंने इस बंजर ज़मीन को जिस वक्त जहाँ कुछ भी नहीं था उसको ख़रीदा और इसकी कीमत अदा की। उस ज़माने में जो लोग वहाँ रहते थे वो बंतिया बे नून त्वे या हे बंतिया ज़बान बोला करते थे, और बंतिया ज़बान में भेड़ को निकाया कहते थे, तो बंतिया की निकाया, फिर वो बाद में बानकिया कंपाउंड वर्ड बन गया बानकिया, यानी जहाँ पर भेड़ें देकर जगह को ख़रीदा गया। उसके बाद एक और नाम वादी सलाम। इस वक्त वादी सलाम जब हम कहते हैं तो कब्रिस्तान जहन में आता है, बेसिकली ख़ुद नजफ़ का नाम वादी सलाम है और वादी सलाम का कब्रिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इट, एक उसका हिस्सा था। जैसे हम कहते हैं कि मेवाशाह का कब्रिस्तान है तो उसका इलाका कुछ और होगा और उसका कब्रिस्तान यानी उस शहर का कब्रिस्तान वो मेवाशाह का कहलाएगा मसलन। तो वादी सलाम पूरे नजफ़ अशरफ का नाम था और कब्रिस्तान उसमें मौजूद था, तो उसको कहा जाता था कहते कि वादी सलाम का कब्रिस्तान। लेकिन जब नजफ़ एक अलग हैसियत में मौला अली की मरकज और हरम मुतहर के हवाले से मशहूर हुआ तो वादी सलाम का नाम कब्रिस्तान से मखसूस हो गया और बाकी शहर को जो है वो नीजफ़ या नजफ़ कहा जाने लगा, वरना इस पूरे इलाके का नाम पहले वादी सलाम था। ये भी याद रहे कि पहले ज़माने में यहाँ पर मुसलमानों की नहीं क्रिश्चियंस की ईसाइयों की खबरें हुआ करती थी, और अभी भी कई खबरें खोदते हुए सलीब निकलती है कि वो जो पहले ज़माने के इस्लाम से पहले यहाँ पे एक हैरा शहर होता था इसके करीब, वहाँ पे ईसाई रहा करते थे। तो मौला अली की तदफीन के बाद फिर इस्लाम के आने के बाद मुसलमानों की रिहाइश के बाद अब जो है वो ईसाई यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक नाम इसका लिसान है, आसान है समझना क्योंकि लिसान यानी ज़बान भी रेक्टेंगल शेप की होती है और उभरी हुई होती है, एग्जैक्टली इसी शेप का नजफ़ भी है, यानी रेक्टेंगल मुस्ततील शेप का है और थोड़ा सा उभरा हुआ है। एक नाम है हैरा। हैरा इस्लाम से पहले बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खुशहाल तरक्की याफ्ता शहर था, जैसे आप समझ लें एक ज़माने में बगदाद हुआ करता था या आजकल हम जो बड़े बड़े शहर हैं, पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, बॉम्बे है या दुबई है, इन शहरों इन जगहों को हम ले लें, तो इतना खूबसूरत शहर था कि जो भी जाता था वो हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता था। जब भी उससे पूछा जाता वो कहता था कि भाई बड़ा ही हैरान कुन। अच्छा, अजीब बात यह है कि नजफ़ की उस ज़माने में कोई कदर कीमत नहीं थी। अगर कोई पूछता भी था नजफ़ कहाँ है तो वो कहते थे ये वो इलाका है जो हैरा के रास्ते में पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पिंडी की अहमियत इस्लामाबाद की वजह से है, वरना पिंडी में कोई ख़ास ऐसी चीज़ें नहीं है, जगह ही नहीं है। तो नजफ़ की नाऊज़ बिल्ला उस वक्त हैसियत ये थी कि इसलिए लोगों की ज़बान पर आता था क्योंकि हैरा के साथ हुआ करता था। अब जो है लोग हैरा को नहीं जानते, नजफ़ को जानते। बुर्रासा या बरासा, मस्जिद बुर्रासा भी आपने सुनी होगी। बुर्रासा कहते हैं बैरूनी जगह को, खारजी जगह को। जैसे हमने आपको बताया बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ कूफा, तो कूफे का बाहर का हिस्सा ये कहलाता था। तो जब भी इसका नाम आता था तो उसको पुश्ते कूफा या बैरूनी कूफा या खारिज कूफा कहा जाता था। इसलिए इसका नाम बुर्रासा पड़ गया कि ये कूफे के बाहर का हिस्सा है या पुश्ते कूफा है। एक नाम है इसका हवार। हवार कहते हैं मुबाहिसे को, डायलॉग्स को, मुजादले को या मुकाबले को। और उसकी वजह यूं बयान की जाती है कि नजफ में अक्सर तारीख ये बताती है कुछ तो खून का बाजार गर्म रहा है और कई कई हमला आवर फ़ौजों ने इस पे हमला किया है फ़कत शिया दुश्मनी में। जिस तरह कूफा कत्ल गारत का बाजार रहा है, देखा जाए तो पूरा इराक़ ही अपनी हिस्ट्री के अतबार से जंगो जदल का मरकज़ रहा है। तो हवार इसका एक नाम था। हद्दुल अज़रा, अज़रा माजरत को कहते हैं। गालिबन इसका नाम यूँ है कि यहाँ पर इंसान अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से माजरत तलब करता है और मौला की शिफात के ज़रिए अपने गुनाहों को यहाँ पाकर धोता है। तो ये तमाम नाम नजफ़ अशरफ के अलावा, नजफ़ के अलावा 14 या इससे ज़्यादा, इससे आपको काफ़ी बेहतर तौर पे एक इजमाली खाका जहन में आ गया होगा कि नजफ़ की अपने तौर पे क्या अहमियत है। फजीलत से हटकर फ़कत तारीख़ नजफ़ हम देख लेते हैं कि नजफ़ क़ुरून उला या कबल अस तारीख से लेकर अब तक किन किन अदवार से गुज़रा। लेकिन नजफ़ की तारीख से पहले ज़रूरी है उस मुल्क की तारीख को समझा जाए कि जहाँ पर नजफ़ मौजूद है, क्योंकि जो उस मुल्क की तारीख होगी वही नजफ़ की तारीख होगी, या कम अज़ कम नजफ़ की तारीख में उस मुल्क की तारीख का कुछ साया जो है वो झलकेगा। तो इराक़ का जो पुराना नाम है जहाँ पर यह नजफ़ मौजूद है, इराक़ के 18 सूबे हैं, नजफ़ इज़ वन ऑफ देम, 18th सूबे में, 18 प्रोविंसेस में एक सूबा है आपका। करबला एक सूबा है, बगदाद एक सूबा है, इसी तरह नजफ़ भी एक सूबा है। तो इराक़ का जो पुराना नाम है मेसोपोटामिया, अगर अपनी हिस्ट्री की बुक्स में आप पढ़ें, मीज़ो का मतलब होता है बिटवीन, मिडिल। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा स्किन की जो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म ऊपर वाली लेयर, मीज़ोडर्म बीच वाली, और एंडोडर्म इनसाइड इनर लेयर। तो मीज़ोडर्म बिटवीन, इसका पोटामिया का मतलब होता है नहर, दो नहर पोटामिया वरना पोटैम। मुल्क बैनुल नहरैन, ये वो जगह जो दो नहरों दो दरियाओं के दरमियान हो, क्लिफ्टन में भी एक दो दरिया है। तो ये दो दरिया थे, दजला और फुरात। दजला को इंग्लिश में हम कहते हैं टिग्रिस और फुरात को हम कहते हैं यूफ्रेट। ये दोनों दरिया खलीज फारस से निकलते पूरे इराक में बहते हुए चले जाते, एक जो है वो तुर्की चला जाता है, एक जो है वो सीरिया चला जाता है। लेकिन इस पूरे सैलान में, इस पूरे बहाव में, इस पूरे फ्लो में पूरे इराक़ को सरसब्ज करते हुए जाते। और यही वजह है कि इराक़ में तहजीब की हमेशा से फरावानी रही है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि अंबिया अरब ममालिक में क्यों आए, अंबिया एशिया की तरफ क्यों आए, अंबिया वहाँ क्यों नहीं आए। तो ये बात जहन में रखें कि जो कनाडा अमेरिका हैं ये एक सदी दो सदी पहले थे ही नहीं, अमेरिका दो सदियों पहले नहीं था, 50 सदी पहले तो ये मशहूर हुआ है। कनाडा अब कहीं जाके आबाद हुआ है, इसको हम पाकिस्तानियों ने आबाद किया है देखा जाए तो। ये इलाके ऐसे थे ही नहीं। एक्सट्रीम्स वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर के इलाके हैं, ये वो रहने वाले इलाके नहीं हैं। अभी उनको ऑप्शन दिया जाए, पाकिस्तान में वो कम्फर्ट्स पैदा कर दिए जाए, फ़ौरन भाग के यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो कराची का जो टेम्परेचर है वो तो दुनिया में आइडियल तरीन टेम्परेचर में शुमार होता है, कि ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, ना गर्मियों में ज़्यादा गर्मी। तो ये बात हमेशा याद रखें, अगर आप हिस्ट्री का वो मुताला करें तो जितनी भी तहजीबें हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो दरियाओं के किनारे फली फूली या समंदर के किनारे। और इस वक्त भी दुनिया में आप प्रॉपर्टी एजेंट्स के पास चले जाएं, दुनिया में जो जो शहर समंदर या दरिया के किनारे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे कराची, कराची में भी सी व्यू, इसी तरह बॉम्बे, इसी तरह जद्दा, ये जितने भी शहर जो बॉर्डर्स पे हैं समंदर की या दरियाओं की, इस्पेशली दरियाओं के साहिलों पर वाक़ होने वाले इलाकों की कीमत और ज़्यादा होती है। क्यों? कि समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं होता, दरिया का पानी पीने के काबिल होता है। आपने मछली वाले से भी ये सुना होगा कि दरिया की मछली है, मीठे पानी की मछली है, ये ज़्यादा टेस्टी होती है, यकीनन वो ज़्यादा टेस्टी होती है। तो दरिया के करीब रहने वाली तहजीबें ज़्यादा फलती फूलती हैं बनिस्बत पहाड़ी और सहराई इलाकों में। ये भी मैं एक अजीब बात बतला दूँ कि आयोडीन होता है समंदर में और पानी में, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बेहतर होता है, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा डेवलप होता है। सो सहराई इलाकों में रहने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले उतने आईक्यू लेवल के मालिक नहीं होते जितना दरिया समंदर के करीब रहने वाले लोग आईक्यू के मालिक होते हैं। बहरहाल तो इन दो दरियाओं की वजह से ये तहजीब फली पूरी। तो इसमें नाउज़ुबिल्लाह ये कोई फॉल्ट नहीं है, अल्लाह का कसूर नहीं कि अल्लाह ने नबी यहाँ क्यों भेजे। भाई जहाँ आबादी होगी अल्लाह वहीं पे तो नबी भेजेगा, जहाँ ज़्यादा आबादी होगी वहीं तो मस्जिद बनेगी, वहीं पे स्कूल खुलेंगे, वहीं पे पार्क बनेंगे, तमाम चीज़ें वहीं पर होंगी जहाँ आबादी होंगी। जहाँ चंद लोग होंगे वहाँ उसकी बारी बाद में आएगी जब ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इराक़ जो है वो उस ज़माने से तहजीब का मरकज था। मैं आपको बताऊँ, आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा बाबुल की तहजीब है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है, और उससे भी पहले बेबीलोनियन सिटीज़ आपने पढ़े होंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम यहाँ पर आया, यूनान रहता, यूनान में था लेकिन यहाँ पर आया। अच्छा, ये भी अभी आप हिस्ट्री में अभी आपको थोड़ा सा हम बताएंगे, आपको पता चलेगा कि इराक़ को इस्तेमाल गैरों ने किया है, उन इराकियों ने खुद ने अभी तक सही से इस्तेमाल नहीं किया इराक़ को। तो बाबुल की तहजीबें यहाँ पे थी, उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, फिर फारस के लोग आए, ईरानी रहते ईरान में थे, आए इराक़ में। अच्छा, यहाँ पे पानी था, मीठा पानी था। अच्छा, दूसरी बात है कि अच्छा तेल अभी निकला है, लेकिन पहले लोगों को नहीं मालूम था फ़िलहाल वो पानी पे और उसकी ज़रात पे और उसकी फसलों पर गुजारा किया करते थे। जब तेल निकला, दुनिया में दूसरा ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, पहला सऊदी अरब है, दूसरा जो है वो इराक़ है। तो इराक़ के लोगों से पूछा जाए ना कि ये मसला क्या है इराक़ में, तो कहते हैं मसला हम नहीं है, मसला तेल है, जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो लोग आना बंद हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि लोग फिर भी आएंगे क्योंकि शियाने अली हर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारे इमाम मासूम मौजूद होते हैं। तो पहले जो है वो बाबुल की तहजीबें, फिर अलेक्जेंडर ग्रेट, सिकंदर आजम आया, उसने दारुल खिलाफत आया, फिर फारस ने, उसके बाद मुसलमानों ने यहाँ पर रेड किया और उस पर कब्ज़ा किया और इनको अपनी सल्तनत में शामिल किया। उसके बाद बनू उमैया ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, बनू अब्बास ने इसकी तरफ तवज्जो दी कि ये ज़रख़ेज़ इलाका है, पानी है, इसको जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो आपने सुना होगा गोल्डन पीरियड ऑफ मुस्लिम्स, आप कभी हिस्ट्री पढ़ें तो ये वो दौर था जब बगदाद अपने उरूज पे था, यानी बिल्कुल बगदाद ऐसे जैसे न्यूयॉर्क, ये सीरिया का काफिला जा रहा था ना न्यूयॉर्क, उसको रोक लिया गया, ट्रंप ने मना कर दिया। तो ज़माने में यूरोप से काफिले जाया करते थे, बगदाद हमें नेशनलिटी दे दो, जो गोल्डन पीरियड हुआ करता था, बहुत तामीर और बहुत तरक्की, बहुत खुशहाली हुआ करती थी। तो उस वक्त उन्होंने तवज्जो दी, लेकिन ये बात हम फिर भी बतला दें कि हमारे नज़दीक खुशहाली तरक्की कोई मानी नहीं रखती, कि अगर हमारे मासूम और अल्लाह के मुंतखब करदा बंदों को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो जाए, उनको सुई भी चुप जाए, तो हम कहेंगे वो दौर सियातरीन दौर था। तो बहरहाल यहाँ पे जो है इन्होंने तवज्जो दी। अब्बासी खलीफा जब गए तो फिर मंगोल्स ने अटैक किया, और ये था तकरीबन 6 सदी ईस्वी में मंगोल्स ने अटैक किया। मंगोल्स के बाद 12वीं सदी में उस्मानिया खिलाफत क़ायम हुई, जिसमें उसने इराक़ को भी, और ये थे तुर्क ज़्यादातर। अच्छा, जितनी तहजीबें पहले कहीं कहीं हुकूमत कर चुकी हैं, इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे नज़र आती हैं। तुर्की आपको इस तरह क्यों उछलता हुआ नज़र आता है? एक ज़माने में तुर्की की सल्तनत उस्मानिया थी, खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए हम लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में। तो फारस, ईरान जो है क्यों इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन, एक रही है सिविलाइजेशन इस वजह से, इराक़ है, फिर दूसरे अकवाम हैं। तो सल्तनत उस्मानिया 12वीं सदी में रही, और सल्तनत उस्मानिया का जो जवाल हुआ वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो सल्तनत उस्मानिया जो है वो हाथ से चली गई, खुद ही ख़त्म हो गई, और उसकी जगह फ्रांस और ब्रिटेन ने ले ली। अब इनकी बारी थी, इन्होंने खूब खून चूसा, खून क्या चूसा, तेल चूसा, और खूब डब्बे भर भर के जो है वो ले गए, बरतानिया की कंपनीज और फ्रांस की कंपनीज, खूब बेखूब बनाए यहाँ के लोगों को। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो अमेरिका ने कहा अब हमारी बैटिंग है, अब हमारी बारी है, अब आप जाएं। अमेरिका ने वहाँ पे जो है ट्रक के ट्रक भरे, और उसके पीछे लिखा होता था ड्रिंकेबल वाटर या डर्टी वाटर नॉट फॉर ड्रिंक, क्योंकि इसकी तरफ देखी भी नहीं। तेल के कंटेनर्स पे वाटर के जो है लेबल्स लगा लगा के, अभी भी इराक में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं 90% अमेरिकन हैं, 90% वही हैं जिन्होंने इसको तबाह किया है। पहले आपने तबाह करने के लिए असलाह दिया यहीं के लोगों को, सद्दाम को, यहाँ की हुकूमत को, इसी अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस ने असलाह दिया, और इसी को तामीर करने के लिए ईंटें भी यही फ्राहम कर रहे हैं। तो पहले भी ये पैसा लेकर इसको लूट रहे थे, अब भी जो है वो पैसे लेकर इस मुल्क को लूट रहे हैं। 2003 में जब सद्दाम की हुकूमत वासिल जहन्नम हुई, वो खुद वासिल जहन्नम हुआ, उसको फांसी हुई, फिर कहीं जाकर जो है मौका मिला शियों को यहाँ पे आज़ादाना सांस लेने का। 60% ऑन बोर्ड ऑफिशियली इनकी आबादी है, लेकिन मेरी खुद एक इराकी से बात हुई है तफसीली, तो उसने कहा कि इस वक्त 80% शिया हैं, क्योंकि बहुत सारे गैर शिया अफराद इसको छोड़ के अब जा चुके हैं कि इस मुल्क में अब रहा नहीं कुछ। यहाँ पे अरबईन पे करोड़ों का मजमा, फिर चेहर वो आशूर पे, फिर जो है वो रजब में, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो इतना जैसे अंचोली लोग छोड़ के चले जाते हैं कि भैया आए दिन मजलिसें होती रहती हैं, क्या मसला है। तो अब 80% जो अनऑफिशियल पॉपुलेशन है वो 80% जो शिया हैं। इसीलिए फिर दोबारा जो आलमी पॉलिटिक्स की जो बिसात है वो हरकत में आ गई है कि ये कहीं मुल्क शियों के हाथ में ना चला जाए। फिर महाराजीन अकराम का जो असर रसूख वो देख रहे हैं, जो अब तक नज़र नहीं आ रहा था, अब एकदम से देख रहे हैं कि एक हुक्म पर जो है तमाम लोग हथियार लेके, उलमा क्या, तालिब इल्म क्या, एक आम आदमी क्या हथियार लेके पहुँच जाता है दाइश से लड़ने के लिए, तो वो फिर सरगर्म हो गए कि भाई हमें जो है शियाओं से एक लेना है। इसलिए अब साजिश की जा रही है इसको शिया, सुन्नी और कुर्द तीन हिस्सों में तकसीम किया जाए और तीन इराक बनाए जाए। तो ये आपने देखा तारीख थी इराक की, खून आशाम जो है वो तारीख थी कि जिसमें हर शख्स ने आके अपना अपना हिस्सा लिया। इसकी जो लोकेशन है वो भी बड़ी प्राइम किस्म की लोकेशन है, एक पाकिस्तान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि कभी इंशाल्लाह बात हुई तो हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस शायद दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। जो लोकेशन है हमारी, हम जिन ममालिक के दरमियान है, जो समंदर है, और अगर हम थोड़ा सा अपने बॉर्डर्स को यूज़ कर लें और सिर्फ आने जाने के लिए टूल टैक्स ले लें, तो उससे हमारी जो है वो ख़र्चा पानी, हमारी जो इनकम है और मईशत है वो समझ जाएगी। तो आप इसमें देख लें इसका जो बैकग्राउंड है, बाउंड्रीज हैं, ऊपर नॉर्थ में तुर्की है, नीचे सऊदी अरब है, राइट हैंड पे ईस्ट पे ईरान है, वेस्ट पे जो है वो जॉर्डन है। तो ये ममालिक इनकी अपनी सिविलाइजेशंस हैं, फारस की, तुर्की की, सऊदी अरब की, और इनका अपना असर रसूख रहा है। तो अभी भी अगर इराक में कुछ होता है तो इन ममालिक जो बॉर्डर्स में हैं उनकी एक अपनी हैसियत वो असर डालते हैं। अच्छा, ये तो मौजूदा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये अंबिया की सरजमीन रहा है। फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है और इराक को भी कहा जाता है। अंबिया में आप ले लें आदम अलैहिस्सलाम, वो यहाँ पे सिर्फ कब्र मुबारक नहीं, कहते उन्होंने इसका मस्कन बनाया था। नूह अलैहिस्सलाम की फ़कत कब्र मुबारक नहीं है, आपने देखा होगा कूफे में जो कुआँ है वहीं से तो पानी निकला था, वो एक तो ऊपर से बरसा था और एक ज़मीन से निकला था, तो वो वहाँ से निकला था पानी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने इसको अपना मरकज़ बनाया, फिर उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसको अपना मरकज़ बनाया, फिर जो है दीगर अंबिया ने। तो अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, यानी पीछे अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आपको यहाँ पे हरकत और हलचल नज़र आएगी। बहरहाल इराक में जो भी आया उसने अपने मकसद के लिए पानी को इस्तेमाल किया, अपने मकसद के लिए जो है वो समंदर को इस्तेमाल किया, अपने मकसद के लिए इसके तेल को इस्तेमाल किया। इस वक्त इसके 18 प्रोविंस हैं, जिसमें हमने बताया आपको करबला एक प्रोविंस है, नजफ़ एक अपना एक प्रोविंस है, बगदाद जिसमें काजमैन वाक़ है वो एक अपना प्रोविंस है, अब आए नजफ की तरफ, नजफ में, नजफ के इतराफ में पहले ईसाई रहा करते थे, मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों के आमिर से पहले ईसाइयों का शहर था, और हैरा जो शहर था वो नजफ के बराबर में वाक़ हमने आपको बताया पड़ोस में। अभी भी वादी इस्लाम की कुछ खबरें जब खोदी जाती हैं मुर्दे को दफनाने के लिए तो ईसाई लोगों की खबरें निकलती हैं और उसमें से सलीब बरामद होती है। मुसलमानों ने जैसे हमने बताया कि हारून रशीद के ज़माने में इसकी तरफ तवज्जो हुई, और उसकी तरफ तवज्जो होने के साथ साथ यहाँ पर जब तशय्यो का जोर हुआ, यानी मौला अली की कब्र मुबारक जब दरियाफ्त थी और लोग आना शुरू हुए, तो दुश्मनान अहले बैत भी सरगर्म अमल हो गए। 18वीं सदी में वहाबियों ने अब्दुल वहाब की सरकर्दगी में इंग्लैंड और फ्रांस की आशीर्वाद में कई अटैक्स किए, और इतने अटैक्स किए और इस बेदर्दी से कत्लेआम किया कि बिल्कुल जिसे कहते हैं जो करबला में हुआ इससे पहले छोटी छोटी करबलाएं और इसी अंदाज के काम तशद्दुद होता रहा। मतलब दरिया फरात से जो नहर आया करती थी उसको ये लोग बंद कर दिया करते थे। मतलब 30,000 आबादी हुआ करती थी, जब वो हमला करते पानी बंद करते तो फ़कत 3 आबादी रह जाती, फिर जब वो चले जाते दूसरे लोग आते। जैसे ईरान के बादशाह शाह सफवी का जो ख़ानदान था उसके बड़े एहसान आते, इसने हरम मुतहर की तामीर में, खुद नजफ़ अशरफ की तामीर में बड़ा हिस्सा लिया, तो वो बाकायदा उन्होंने नहर खोदी फरात से जो नजफ आती थी, तो आबादी एकदम से 60,000 हो गई। तो आपने देखा अजीब पारा सिफत तारीख है नजफ की, कभी इतने ज़्यादा लोग, कभी एकदम से कम लोग, कभी लोगों का झुकाव नजफ की तरफ, कभी जो है वो नजफ से फरार, बिल्कुल मौला अली की शख्सियत की तरह। खैबर और खंदक में जो है मौला अली के आगे पीछे के, मौला अली कुछ जौहर दिखाएंगे तो हमें माले गनीमत मिलेगा, और जब रसूलुल्लाह का इंतकाल होता है तो मौला अली से बिल्कुल मुंह फेर लेते हैं कि सलाम का जवाब भी नहीं, जब खिलाफत मिलती है तो फौरन आ जाते हैं हमें भी कुछ मनसब दे दीजिए, और फिर जो है इल्ज़ाम लगाकर उनके खिलाफ लश्कर कशी। तो अजीब व गरीब है, किसी ने जो है उनको खुदा से मिलाया और किसी ने जो है उनको काफिर करार दिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह नजफ का भी यही हाल है, किसी ने जो है अपनी पूरी दुश्मनी उतारी है और कुछ तो खून का बाजार गर्म किया, और किसने जो है इसको हमेशा अपना मस्कन बना के छोड़ा। इस वक्त मौजूदा नजफ अगर आप जाएंगे तो हरम के आसपास 4 इलाके हैं, जो नॉर्थ एरिया है वो अम्मारा का इलाका कहलाता है, और जो नीचे का इलाका है साउथ का वो जो है बुर्राक या हवेश कहलाता है। ये आपको मोहल्ले मिलेंगे 4। नजफ़ का जो हौज़ा इल्मिया है, जैसे हमने बताया इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है अपनी अपने दौर पे तारीखी एतबार से हटकर, सबसे पहले जो नजफ़ अशरफ को मौला अली के बाद की बात कर रहे हैं जो शरफ़ बख्शा इल्मी एतबार से, वो शेख तूसी थे। शेख तूसी ने 5वीं सदी में नजफ़ का रुख किया, क्यों? सलजोकियों ने हमला कर दिया था काज़मैन बगदाद पर, 80,000 किताबें उनको अपने उस्ताद सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा से मिली थी, 80,000 किताबें जला दी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी किताबें और हमारे असासे किस तरह बर्बाद हुए। उनकी कुर्सी मिंबर जला दिया गया शेख तूसी का जो काज़मैन में था, उनके घर को जला दिया गया, चुनाचा वो काज़मैन से नजफ़ आए। और आपको मालूम है हमारे यहाँ जो रूल होता है वो ये कि जहाँ मुश्तहिद होगा वहाँ शहर आबाद होगा, जहाँ जो है वो आलिम जाएगा वहाँ उसके पीछे पीछे पूरा शहर चले। शेख तूसी के पीछे पूरा काज़मैन उठकर आ गया। शेख तूसी अपने ज़माने के वो आलिम दीन थे जिनके बारे में कहा जाता था एक एक वक्त में उनके दर्स में फ़कत मुश्तहिदीन की तादाद 300 हुआ करती थी, जो मुश्तहिद हुआ करते थे, बाकी तो अल्लाह वो तो अलग बात है। तो शेख तूसी कितना बड़ा नाम है, आज भी आपको किताबों में अगर शेख नाम मिल जाए, वरना तो बहुत से शेख मुर्ज़ा अंसारी गुजरे हैं, शेख याकूब कुलैनी गुजरे हैं, शेख सदूख गुजरे हैं, लेकिन जहाँ भी नाम शेख मिल जाए इसका मतलब है शेख तूसी। तो बहरहाल ये आए, इन्होंने यहाँ पे हौज़ा इल्मिया कायम किया। उसके बाद शेख मुकद्दस अर्दबेली आए, इन्होंने इसमें इस शहर में 4 चांद लगाए और लोगों की तवज्जो इस तरफ हुई। उसके बाद शेख मुर्ज़ा अंसारी आए, सैयद मेहदी बहरुल उलूम आए, काशिफुल गिदा आए, इनकी वजह से लोगों की तवज्जो और लोगों की रिहाइश और लोगों की जो है जो एहसानात हैं और जो लोगों की तामीर और तरक्की में हिस्सा है वो लोगों के सामने आया। इसके बाद जब ईरान का हौज़ा इल्मिया उम कायम हुआ तो उस वक्त आखवंद खरासानी और आयतुल्ला नाइनी, आखवंद खरासानी शेख मुर्ज़ा अंसारी के शागिर्द थे, शेख मुर्ज़ा अंसारी की 2 किताबें रसाइल मकासिब हौज़ा इल्मिया में पढ़ाई जाती हैं, और तीसरी किताब और मजमू तौर पर हौज़े की आखिरी किताब जिसके बाद आपको दरस खारिज में जाना होता है, वो किताब उनके शागिर्द आखवंद खरासानी ने लिखी। तो आखुद खरासानी और आयतुल्ला नाइनी ने यहाँ आकर हौज़े को संभाला और यहाँ की जो है वो بسات کو درست کیا اور مزید اس کو آرگنائز اور منظم کیا. تو آپ نے دیکھا کہ جب نجف کو ضرورت پڑی قم نے لبیک کہا اور جب قم کو ضرورت پڑی تو نجف نے لبیک کہا. تو اس طرح یہ دونوں علمی گہوارے اور دل علمی مراکز جو ہیں ہمیشہ پھلتے پھولتے رہے ہیں. مطلب اگر مومنین کو علماء کرام کو مجتہدین کو نجف میں موقع ملا انہوں نے یہاں پہ اپنے جوہر دکھائے, قم میں موقع ملا وہاں پہ جوہر دکھائے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہی حال علماء کا مجتہدین کا اور مومن کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو جگہوں سے مخصوص نہ کرے کہ میں مسجد میں ہوں مدرسے میں ہوں تو نیکوکار بنوں گا اور اگر میں گلی کوچوں میں ہوں گا رشتہ داروں میں محفل میں ہوں گا تو نیکوکار نہیں بنوں گا. یہ غلط پالیسی ہے. آپ کو ہمہ وقت علم دین کی تڑپ رکھنی ہے, علم دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی ہے. اب آ جائیں فضیلت نجف. کیا نجف خود مولا علی کی تدفین سے پہلے کوئی اہمیت رکھتا تھا؟ کیونکہ ہمارے آئمہ ہمارے معصومین اہل بیت جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس میں کوئی علت ہوتی ہے. کیا مولا علی نے فقط ایسے ہی اس کو منتخب کر لیا تھا یا واقعی اس میں کوئی خوبی تھی جو مولا کو نظر آئی اور پھر وہاں پہ گئے؟ کیونکہ مولا اکثر کہا کرتے تھے اے نجف تو تیرا ظاہر کتنا خوبصورت ہے تیرا باطن کتنا دل آویز اور کاش میری قبر تیرے ہاں بنے. خود مولا کہا کرتے تھے, اس میں کیا خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے مولا علی نے شہر نجف کو اپنی آخری آرام گاہ کے طور پہ منتخب کیا؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے مولا. خود مولا علی کی روایت ہے کہ نجف اولین عبادت گاہ ہے. جب فرشتوں کو کہا گیا کہ تم جو ہے آدم کو سجدہ کرو تو یہی وہ سرزمین ہے. کون سی؟ نجف کی, کہ جہاں پر فرشتوں نے سجدہ کیا. تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ نجف اشرف ہے. پھر کہتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے, پھر نیچے بیت اللہ کا طواف کرتے, پھر یہی 70,000 فرشتے مسجد نبوی جاتے ہیں وہاں قبر رسول کا طواف کرتے ہیں, پھر یہی فرشتے نجف اشرف جا کے حرم مطہر کا طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ ایسا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کے علاوہ ایک اور اہمیت, مودت اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کرنا چاہا تو سب سے پہلے آسمان نے لبیک کہا, اللہ نے اس کو اپنا عرش بنا لیا. اس کے بعد چوتھے آسمان نے لبیک کہا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت المعمور سے شرف بخشا. اس کے بعد آخری یا دنیاوی یا ساتویں آسمان نے حامی بھری تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں سے مزین کیا. اس کے بعد مکہ مکرمہ نے حامی بھری تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بیت اللہ سے مشرف کیا. اس کے بعد یثرب نے مدینۃ النبی نے لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر مطہر رسول سے زینت بخشی, اور پھر آخر میں جب کوفہ نے لبیک کہا تو اللہ نے اس کو نجف اشرف میں مولا علی کی قبر سے شرف بخشا. یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, اس آیت کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا. اگر انسان شروع کر دے تو انشاءاللہ جب بے جان چیزوں کو جگہوں کو شرف مل سکتا ہے تو ہم جیسے عاقل اشرف المخلوقات جیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ شرف کیوں نہیں بخش سکتا. کعبے میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا, جب ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے کعبہ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ کعبے کے لیے پتھر چار جگہوں سے منتخب کر کے لاؤ. کوہ صفا جو وہیں واقع ہے, کوہ مروہ وہ بھی وہیں واقع ہے, اس کے بعد کوہ طور جو کہ نجف میں ہے اور خود نجف اشرف کے پتھر, ان چار جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے لیے پتھروں کو منتخب کیا اور پھر اپنا جو ہے بیت اللہ بنایا. ایک اہمیت نجف کی اس لیے ہے کہ ملکیت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جاگیر. خود مولا علی نے اپنے زمانے میں 40,000 درہم دے کر اس کو خریدا اور کچھ گواہ بنائے. تو لوگوں نے کہا جو گواہ بنے دے کہ مولا آپ اس بنجر زمین کے لیے 40,000 درہم کیوں خرچ کر رہے؟ تو آپ نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ قیامت کے دن 70,000 अफराद महशूर होंगे जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, मैं चाहता हूँ वो अफराद मेरी मिल्कियत में से हों। तो ये इब्राहिम की भी मिल्कियत है और अली की भी मिल्कियत है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसी सरजमीन पे बनाया, ईसा मुकद्दस को मुकद्दस इसी सरजमीन पे बनाया, इब्राहिम को खलील खलीलुल्लाह इसी सरजमीन पर बनाया, और रसूल अल्लाह को अपना हबीब इसी सरजमीन पर करार दिया। जिस तरह इराक की अपनी तारीख है, नजफ़ की अपनी तारीख है, ख़ुद हरम मुताहर इमाम अली की भी अपनी तारीख है। अली की कब्र एक अरसे तक गुमनाम थी, जैसे हमने बताया पहले कि बीबी सैयदा की कब्र तो अब तक गुमनाम है, अली की भी कब्र एक अरसे तक गुमनाम थी। मतलब पत्नी कैसी उम्मत है, एक की कब्र को एक अरसे तक गुमनाम रखा गया, उसकी जौजा की कब्र को अब तक गुमनाम, फिर एक की लाश पे लाशे पे आपको पामाल किया गया घोड़े से, और एक के जनाजे पे तीर बरसाए गए। और अगर ये आयत ना होती उल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, अगर ये आयत ना होती कि मैं ताकीद करता हूँ अजर रिसालत यही है कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, अगर ये आयत ना होती तो उम्मत क्या करती। अजीब उम्मत है कि अपने मोहसिनीन को ज़िंदगी क्या ज़िंदगी के बाद भी न बख्शा। तो मौला अली की खबर को गुमनाम रखा गया, मौलाना ने बाकायदा वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को पीछे से पकड़ना, आगे से ना पकड़ना, आगे से फरिश्ते पकड़ेंगे, वो जहाँ ले जाएं बस वहाँ चलते चले जाना। चनाचा लोगों ने पीछे से पकड़ लिया, हसन हुसैन थे पीछे से पकड़ने वाले, और आगे किसी ने नहीं पकड़ा, और वो ईस्तादा रहा, सदा ज़मीन से बुलंद रहा। तो वो जहाँ जाता जनाजा और लोग उसके पीछे पीछे चल जाते, बहुत कम लोग थे, बहुत ही जैसे कहते हैं मुखलिसीन उसमें शामिल थे। इसी जगह नजफ में जाकर वो जनाजा रुक गया, उनकी वहाँ तदफीन हुई, और एक अरसे तक उसको गुमनाम रखा गया। क्यों गुमनाम रखा गया? सबसे पहले तो खवारिज, जिन्होंने जंग सिफीन में मौला अली का साथ देने से इनकार किया, नाउज़ुबिल्ला आपको काफिर करार दिया, वो इस कोशिश में थे नाउज़ुबिल्ला, पहले तो शहीद किया अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो खवारिज में से था, जिसको अमीर शाम ने रिश्वत देकर मजबूर किया कि तुम अली को कत्ल करो। उसके अलावा अली की तदफीन के बाद भी वो इस बात की कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह हमें इनकी खबर मुबारक नाउज़ु बिल्लाह पता चले, हम इनका लाशा पामाल करें निकाल कर। तो बनू उमैया ने में हज्जाज बिन यूसुफ ने मलून ने पहले ये कोशिश की, 3000 से जायद कब्रों को उसने खुदवाया कूफे में कि इनमें से अली की खबर कौन सी नाउज़ु बिल्लाह, लेकिन वो मलून इसमें कामयाब नहीं हुआ। बनू अब्बास के दौर में अब्बास दाऊद अब्बासी एक बादशाह गुजरा 132 हिजरी में, उसने कब्र दरियाफ्त होने के बाद अपने तो दरियाफ्त हो गई थी हारून रशीद के बाद, तो अपने गुलामों को कहा कि जाओ नाउज़ु बिल्लाह कब्र कशी करो और लाश को पामाल करो। तो ये गुलाम गए, 5 हाथ उन्होंने कब्र को खोदा, अंदर गए तो बहुत बड़ा सा पत्थर, उस पर ज़रब लगा रहे हैं तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तो जो सबसे ताकतवर गुलाम था हबशी गुलाम, उसको बोला कि तुम दौड़ो उसको, उसने आके ज़रबे लगाईं, 2-4 ज़रबे लगाईं और हाँप गया, हाँपने के बाद रोने लगा, बिलबिलाने लगा, एकदम से कब्र से बाहर आया तो उसके जिस्म से गोश्त के टुकड़े गिर गिर के कट कट के गिरने लगे। लोगों ने फ़ौरन जाके दाऊद अब्बासी को बताया कि भाई इसके साथ तो ये हुआ, तो उसने फ़ौरन कहा कि किसी को बताना मत कि ये मैंने कहा था या तुम लोगों ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, बल्कि उल्टा जाकर मकबरे की अज सर नौ तामीर की ताकि लोगों को ये तासर दे सके कि मैं तो अली का चाहने वाला हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो मामून रशीद ने किया था, बाप को कत्ल करके बेटे को जो है वो अपना वली अहद बना दिया। तो अगर बनु उमैया बनु अब्बास के लोग कहीं कोई फेवर करते हुए नज़र आते हैं तो उसके पीछे कोई सियासी चाल हुआ करती है। इसके अलावा ख़ुद अरब कबाइल से ख़तरा था, ये एक अजीब ख़तरा था अरब कबाइल से। क्यों? मौला अली अपने सामने आने वाले को इस्लाम की दावत दिया करते थे, नहीं कबूल करता था तो तलवार से 2 टुकड़े कर दिया करते थे। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि जिस जंग में वो शरीक होते मैन ऑफ द मैच, सबसे ज़्यादा जो मकतूल थे वो उनके हाथों ही वासिले जहन्नम होते, तो अरब कबीले का कोई कबीला ऐसा नहीं छोड़ा, अरब कबीलों कबाइल में कोई ऐसा कबीला नहीं था कि जिसके अफराद में से कुछ अफराद को मौला अली ने ना कत्ल किया हो। यानी हर कबीले का मुश्तरका दुश्मन अली की ज़ात थी, तो अरब कबाइल से उनको खतरा था कि अरब कबाइल, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि ठीक है आप कहेंगे भाई रसूलुल्लाह की आमद के बाद तो मुसलमान हो गए थे, रसूलुल्लाह की आमद के बाद मुसलमान तो हुए थे, लेकिन कैसे मुसलमान हुए थे? सुफियान जैसे, फतह मक्का के बाद ज़्यादातर लोग क्यों मुसलमान हुए थे? मजबूरी में मुसलमान हुए थे, और जब उन्होंने देखा कि इस्लाम लाने में फ़ायदा है तो इस्लाम ले आए मजबूरन, वरना तो वापस पलट जाते, और जिनको हुकूमत नहीं मिली वो वापस पलट गए। खुद शिबली नुमानी ने अपनी किताब अल फारूक में लिखा है कि रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद अरब कबाइल में कोई ऐसा कबीला नहीं था कि जिसका कोई ना कोई फर्द मुर्तिद ना हो गया हो वापस। तो आपने देखा कि लोगों ने रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद किस तरह अपना रुख फेरा, तो अरब कबाइल से था खतरा। तो उस ज़माने में इसका किस्सा इंशाल्लाह हम आगे जाके तफसील से सुनाएंगे, लोग जो है पूछा करते थे, क्योंकि देखिए ना जिस तरह शहरों में तंजीमों में एक उरूज एक जवाल आता है, कराची में रहने वाले तो जानते होंगे उरूज और जवाल आता है, पाकिस्तान में रहने वाले इनकी सियासत को वाकिफ होंगे, तो जब कबाइल को उरूज आता था तो वो पूछा करते थे कि हमारे दुश्मन कौन कौन गुजरे हैं, फला 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 फला, उनकी खबरें कहाँ हैं, तो उनकी खबरों पर जाके उनकी खबरों को पामाल किया करते थे। बनू अब्बास ने बनू उमैया की कई खबरों को बादशाहों को निकाल निकाल के, बल्कि तारीख तो कहती है कि बनू अब्बास ने बनू उमैया के हर बादशाह की खबर के लाशें को निकाल कर पामाल किया सिवाय उमर बिन अब्दुल अजीज़ के, और उसके बारे में हमारे उलमा फरमाते हैं कि ये वो वाहिद बादशाह था बनू उमैया का जिसने अली पे लानत रुकवाई, शायद इस वजह से उसकी लाश की बेहरमती होने से रुक गई। बहरहाल तो ये मौला अली को खदशा था, जो नाचा उन्होंने जो है वो अपने कब्र को गुमनाम रखा। और अच्छा ये भी देखें कि कब्र जो है उसका इंकशाफ दुश्मनान अहले बैत ही में से हुआ, और हदीस रसूल मौजूद है, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है कि अल्लाह ताला बसाओकात दीन का काम नेक बदकार फासिक व फाजिर से भी करवाता है। हारून रशीद एक दफ़ा शिकार के लिए गया तो उसको हिरन और ज़ेबरे नज़र आए, ज़ेबरा, तो वो बड़ा खुश हुआ, हिरन तो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ शिकारी के लिए मानी जाती है, ज़ेबरा मफकूद था, तो इसने अपने कुत्ते शिकारी कुत्ते पीछे लगाए और गिद्ध को उड़ाया कि जाओ पकड़ो। तो कुछ देर गए तो ये जो हिरन था और ज़ेबरा था ये जाके ना टीले पे जाके खड़े हो गए। अब वो परेशान के कुत्ता ना आगे जा रहा है ना गिद्ध हमला कर रहा है, जैसे डर रहे हों इस जगह से, जाएंगे तो कोई ज़रर पहुँचेगा, मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो काफ़ी देर जब गुजर गई तो उसने वहाँ पर मौजूद एक शख्स को पूछा जो वहाँ का रिहायशी लगता था कि क्या मसला है, ये कुत्ते और ये गिद्ध आगे क्यों नहीं जा रहे, लेकिन हिरन और ज़ेबरा तो वहाँ खड़े हुए टीले पे। तो फिर उसने बताया ये मौला अली की खबर है। जब उसको पता चला तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है अपने आप को ख़ानदान आले बैत से मोहब्बत करने वाला ज़ाहिर करने के लिए। तो उसने पहली मरतबा बाकायदा कब्र तामीर की, ज़री बनाई और मज़ार बनाया और आम लोगों के लिए उसको खोला। पहली मरतबा जो है लोगों को पता चला कि यहाँ पे मौला अली की कब्र है, और फिर आम लोगों ने वहाँ पे आना जाना शुरू किया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मौला अली के हरम मुताहर में तामीरात में हिस्सा लिया, वैलम मूसल तब्रिस्तान के वहीं के इलाके हैं के शिया जो थे, वैलम तब्रिस्तान और मूसल के शिया, उन्होंने आके इनकी कब्र मुबारक पर किसी ने गुंबद तामीर कराया, किसी ने ज़री, किसी ने कब्र को कुशादा किया, कभी हरम वसी किया। लेकिन शाह सफवी इस्माइल सफवी ख़ानदान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ईरान के, बल्कि उन्होंने उस्मानिया सल्तनत जो उस वक्त मौजूद थी और ईरान में सफवी ख़ानदान था, उन्होंने कहा भी था उस्मानी सल्तनत को कि आप नजफ हमारे हवाले कर दें, हम संभाल लेंगे, हम इसको देख लेंगे। जैसे हज एक ज़माने में तुर्कों के अंडर में था, आपको याद होगा, और वो टेक केयर करते थे। और एक ख़बर ये भी आई है कि अभी इस वक्त सऊदी अरब की मईशत इतनी बुरी तरह बदहाली की तरफ जा रही है कि उन्होंने तुर्की से रिक्वेस्ट की थी कि आप हज संभाल लें दोबारा फॉर द टाइम बींग, लेकिन ख़ुद तुर्की की जो सियासी सूरत हाल है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो हज को टेक केयर करें। तो तुर्कों से यानी सल्तनत उस्मानिया से रिक्वेस्ट की थी शाह इस्माइल ने कि ये नजफ हमें दे दो और जितनी कीमत चाहे ले लो। तो उस ज़माने के तुर्की वज़ीर या उस्मानी वज़ीर ने कहा था कि नजफ़ का एक पत्थर हमें एक एक हज़ार लोगों से ज़्यादा अजीज़ है, नजफ़ तो क्या हम एक पत्थर भी नहीं देंगे। बहरहाल जब उनकी कब्र मुबारक दरियाफ्त हुई तो लोगों की जो सोई हुई मोहब्बत थी मौला अली से वो जाग उठी। इस तरह खलीफा सोयम के बाद एकदम से लोगों के दिलों में मौला अली की खलीफा मोहब्बत जाग उठी। इस तरह उनकी खबर के इनकशाफ होने के बाद लोग जोग दर जोग यहाँ पर आया करते थे, ज्यारत किया करते थे, और जो भी अपनी तारीमत जो बादशाह अपने अपने हिसाब से इसकी तारीम व तरक्की में हिस्सा ले सकता था। शाह सफवी इस वजह से भी बेहतर है कि अब्दुल वहाब ने अपने टोले की सरकर्दगी में कई हमले किए 18वीं सदी में, और इतना कत्ल व गारत किया कि सिर्फ करबला में 12,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, और न सिर्फ कत्ल व गारत बल्कि पानी तक रोक लिया करते थे। तो ये शाह सफीवी ने बाकायदा फरात से एक नहर खुदवाई जो कि नजफ़ आया करती थी, तो हर में मुतार की तामीर उन्होंने बहुत हिस्सा लिया। इस वक्त भी अगर आप जाएँ तो वहाँ पर इराक के बाद जो कौम आपको मैनेजमेंट में इंतज़ामिया में नज़र आएगी वह ईरानी अफराद हैं। फिर जब शाह सफवी उस सल्तनत उस्मानिया का दौर ख़त्म हुआ तो फिर सद्दाम मलून का दौर शुरू हुआ, और इसने कोई दकीका फरोज गुजाश नहीं किया वहाँ के जो ज़ायरीन थे उनको डराने धमकाने में। एक दौर तो ये था कि अगर कोई वहाँ जाता था तो वो अपने आप को अकेला पाता था। बाज़ रातों में बाज़ अय्याम में ऐसा भी हुआ है खौफ की रातों में कि वहाँ फ़कत एक ही ज़ायर नज़र आता। हमारे एक दोस्त उस ज़माने में जब गए थे सद्दाम के ज़माने में तो बता रहे थे कि हरम में फ़कत मैं खड़ा हुआ था और कोई भी नहीं था। पाकिस्तान से गए थे, ये जोश जज्बे से मामूर थे, फ़कत ये खड़े हुए थे और कोई भी नहीं था। तो ऐसी हालत भी हुई है कि लोग जाते हुए डरते थे, मुंतज़मीन में गार्ड्स में और जो अफराद होते थे बाकायदा इनके एजेंट्स घुमा करते थे जासूस कि कौन लोग आ रहा है कौन जा रहा है। ये देखिए इस तस्वीर में जो है ये सद्दाम आयतुल्लाह खोई को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके ले जा रहा है। तो पूरी कोशिश की इन्होंने जो है वहाँ के मराजीन को मुज्तहिदीन को सताने की, वहाँ के लोगों को किसी तरह के यहाँ की ज़्यारत का ज़ोर कम हो जाए। लेकिन जब 2003 में ये वासिले जहन्नम हुआ, इसको फांसी हुई, तो फिर मकामात मुकद्दसा का पूरा इंतज़ाम वजारत औकाफ़ से निकल कर दीवान वक्फी शी के पास आ गया। पहले हुकूमत के कंट्रोल में था और हुकूमत में अहल तशय अहल तसन्न दोनों हुआ करते थे, वो दोनों संभालते थे। लेकिन अब ये शर्त रखी गई है कि तमाम इराक़ के तमाम मकामात मुकद्दसा में फ़कत शिया अफराद जो होंगे और वही इंतज़ाम संभालेंगे। तो दीवान वक्फी शी के बाद से एकदम से इनकलाबी तब्दीली आई हैं। आप जाके देखें वहाँ कितनी सहूलियात हो गई हैं, स्पेशली जो अभी 2-4 साल का वक्त जो गुज़रा है, बिल्कुल कुछ अरसे में आप देखिएगा मक्के मदीना को फैसिलिटीज़ वाइज बिल्कुल बीट कर देगा, पीछे छोड़ देगा। तो अच्छा, ये भी खुशखबरी है कि अभी जो जरी लगी हुई थी मौला की कब्र मुबारक पर उसको हिंदुस्तानी और चीनी कारीगरों ने तैयार किया था। तो ये भी हमारे लिए माशाल्लाह एक अच्छी बात है, हमारे लिए एक सआदत है। लेकिन अभी तकरीबन ये बात होगी एक महीने पहले की, इसी महीने जनवरी के महीने में आपने भी सुना होगा 70 साल पुरानी जरी को हटा दिया गया है और नई जरी लगाई है जो उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जो जरी लगी है वो 70 साल पुरानी जरी के मुकाबले में लगी है और इसी महीने लगी है। अब आइए नजफ़ की अहमियत को देखने के बाद ख़ुद अमीर मोमिनीन की ज़ियारत के क्या फ़ज़ाइल रिवायात में मरकूम है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले नाम में। मौला की पैदल ज़ियारत करबला के हवाले से आपने सुना होगा। ख़ुद मौला की पैदल ज़ियारत अगर कोई करे हर कदम के बदले एक हज एक उम्रे का सवाब, और अगर वापस भी पैदल आए तो हर कदम के बदले 2 हज 2 उम्रे का सवाब। अब कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं होटल कितना करीब है? होटल करीब होना चाहिए। आप देखें तो आपको कितने हज मिल रहे हैं। आप जो है होटल करीब लेके क्या करेंगे? दूर होटल है तो अच्छा है, जब पैदल जाएंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा और करीब होगा तो कम सवाब मिलेगा। तो मौला ने हमारे लिए, आइम्मा ने हमारे लिए हमारी मुश्किल में भी हर मुश्किल का एक एक जो है अजीम सवाब रखा है। देखिए अल्लाह ताला और मासूमीन हमारा क्या कहते हैं पर्दा कितना रखते हैं। माह रमज़ान में क्या होता है, आप थक जाते हैं सो जाते हैं, फिर थक जाते हैं फिर सो जाते हैं। अम्मी क्या कहती हैं कि भाई बेटा क्या पूरा रोज़ा तुम जो है वो सोते में गुजारोगे? हम क्या कहते हैं फ़ौरन, आपको मालूम नहीं सोना इबादत सांस तस्बीह। तो हम जैसे निकम्मों की अल्लाह ने लाज रख ली, रसूल अल्लाह ने पर्दा पोशी कर ली, हम सोते हैं और आराम करते हैं अपनी काहिली इसकी वजह से, लेकिन बड़े फख्र से कहते हैं आपको मालूम नहीं इसका कितना बड़ा अजर है। अब सुनिए उन लोगों के बारे में जो सुस्ती काहिली में हरम नहीं जाते और होटल से चिपके बैठे हैं, वाईफाई से खेलते रहते हैं, या एसी रूम में बैठे रहते हैं, या डाइनिंग हॉल में बैठे रहते हैं। हरम के क़ुर्बो जवार में, यानी क़ुर्बो जवार का मतलब होटल्स में एक रात बसर करने का क्या सवाब है आपको मालूम है? कितने महीनों की, कितने सालों की इबादत का सवाब होगा? 700 साल की इबादत का सवाब है फकत एक शब आपने होटल में गुजारे, आप सो के आ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, थक गया भाई मैं होटल जा रहा हूँ, इबादत नहीं करोगे? नहीं, अरे तुम्हें मालूम नहीं होटल जाके मुझे 700 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। लेकिन अब आप ये सोचें, थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली ले, कि जो हरम के क़ुर्ब जवार में रहे 700 साल की इबादत का सवाब एक साल में पाए, जो हरम के अंदर रहे वो कितना सवाब पाएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला और जब आदमी ये देखता है कि फ़कत मौला अली नहीं, आदम और आदम सानी भी इसी ज़री में मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्या इल्लत है 1,24,000 में अल्लाह ताला ने इन्हीं को चुना? तो कुछ लोग बयान करते हैं कि आदम आदम अव्वल और नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी, और आदम यानी मिट्टी से बना हुआ या मिट्टी से तख्लीक की हुई चीज़, तो ये दोनों मिट्टी से बने हुए थे, और अली अबू तुराब। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि मौला अली की अम्बिया पे कैसे फजीलत। तो ये दोनों अम्बिया मौला अली की पाइंदी के करीब, पाए अकदस के करीब दफन है, और ख़ुद उन्होंने ये कोई बाई चांस, कोई इंसिडेंट नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था कि बस एकदम से हो गया, कि आदम अलैहिस्सलाम ने और नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों ने ख्वाहिश जाहिर की थी। अब मौला अली तो पैदा होंगे 5,000-10,000 साल बाद, इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी हमें यह दफनाया जाए। तो कहते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती बैतुल्लाह के पास आई और उसने जो है वो तवाफ़ किया, पूरी दुनिया डूब गई थी, काबा नहीं डूबा, ऊंचा था, टीले पे था, मुरब्बा था, मौला अली का शहर मुरब्बा नहीं है, मुस्ततील है, ऊंचा है और टीले पर है। तो किश्ती ने तवाफ़ किया तो वहाँ फ़ौरन वही हुई कि यहाँ पर कब्र में मौजूद आदम अलैहिस्सलाम की ताबूत को निकालो, अपनी किश्ती में रख लो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन खुदाई की, जहाँ पे उनको बतलाया गया था वो पूरा जो है संदूक जो है जहाँ पे जिसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम की कब्र थी, जज़्द खाकी था, उसको अपनी किश्ती में रखा और फिर बताए गए मुकाम पर दफनाया। और फिर ख़ुद, अब उनको मालूम था कि आदम ने भी ख्वाहिश जाहिर की थी जब ये दफन हुए तो यहाँ मौला अली भी होंगे, तो उन्होंने भी अपने लोगों को ये कह दिया था कि मुझे यहाँ दफनाना। तो जब उनको दफनाया गया, उनको भी उनके वालों ने, उनके चाहने वालों ने, पैरोकारों ने दफनाया, और जब मौला अली को दफनाने के लिए लाए गए और जब खबर खोदी गई तो ये वरका बाकायदा नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से निकला कि मुझे यहीं पर दफनाना। तो दोनों अफराद की ये ख्वाहिश थी, ये कोई एक बाई चांस वो नहीं था कि दोनों अफराद या तीनों अफराद जो है इत्तफाकन वहीं पाए गए। वरना आप देखें कि अल्लाह ताला ने, ये भी एक देखिए तारीखी हकीकत है जिससे ये बात साबित हो रही है, कि आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जारी की थी इसलिए अल्लाह ताला ने दोबारा उनको अपनी कब्र से निकलवाया। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कह सकते हैं भाई बाई चांस वो वहीं पर कोई जूदी जो है वहीं पर किश्ती आके ठहरी थी, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया, वहीं उन्होंने मस्कन अख्तियार किया। आदम अलैहिस्सलाम तो नहीं थे वहाँ पर, वो तो वहाँ थे बैतुल्लाह की तरफ थे, मक्के मौजमा में थे। तो इन दोनों की ख्वाहिश थी कि हम किसी तरह हज़रत अली के साथ उनकी कब्र मुबारक के आसपास जो हैं वो दफन हों। खुद फजीलत के हवाले से छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम लोगों को मैं पुश्ते कूफा की तरफ जाने के लिए सिफारिश करता हूँ कि वहाँ पे एक कब्र है कि अगर कोई शख्स अपनी किसी भी बीमारी के साथ जाएगा तो शफायाब होकर वापस पलटे। खसूस तौर पर 27 लैलतुल आया जिसे कहते हैं, 27 रजब, जिसका जिक्र खुद इब्ने बतूता ने भी अपनी किताब में किया है। तो मौला इमाम फरमाते हैं कि जो भी जिस बीमारी के साथ जाएगा इस कब्र मुबारक में हाज़िरी देगा मौला की, और सच्चे दिल से दुआ करेगा मारिफत के साथ तो वापस बगैर किसी बीमारी के शफा के साथ आएगा। यहाँ भी देखिए मौला ने जो इमाम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है पुश्ते कूफा। अभी हमने कहा था ना जहूर या जहर इसका एक नाम है। बहरहाल जब भी गुफ्तगू तुलानी ना हो इसलिए हमने वो अस्कार यहाँ दर्ज नहीं किए, लेकिन आप कोशिश करें कि तमाम अस्कार को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। इसके लिए हमने आप बताया था कि अगर आप खुशू व खुशू पैदा करना चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि तमाम आमाल को हर बहर लफ्ज़ लफ्ज़ बा तर्जुमा पढ़ें। वरूद कूफा, अराइवल एट कूफा, जब पहुँचें उसकी दुआ। दखूल कूफा सॉरी वरूद नजफ उसकी दुआ, जब अराइवल हो आपका नजफ में। दखूल नजफ उसकी दुआ, उसके बाद इज़्ने दखूल जब हरम में दाखिल हो रहे हैं, फिर दुआ दर सहने हरमे अमीरुल मोमिनीन, फिर उसके बाद रवाक दर मरकदे इमाम अली यानी जो कॉरिडोर है उनका कब्र से पहले ज़री मुबारक से पहले वो उसमें दाखिल होने की दुआ, फिर पाए अकदस की तरफ की दुआ, फिर पुश्ते क़िबला होकर ज़री के सामने खड़े होने की दुआ, फिर सराय अकदस सराहने खड़े होकर दुआ। उसके बाद बहुत सारी ज्यारतें हैं, ज्यारत अमीनुल्लाह खसूस तौर पर ताकीद की जाती है कि इसको पढ़ें। एक नमाज है, वैसे तो हम दो रकात पढ़ते हैं हर मासूम की हर इमाम की ज्यारत के बाद, मौला अली के लिए चार रकातें हैं दो दो रकात करके, और हर रकात में जो है वो आपको पाँच मरतबा कुलवल्ला पढ़ना है। शायद इसकी वजह यही हो कि मौला अली को सूरह तौहीद बहुत पसंद थी, तो मौला अली का चाहने वाला भी अगर वहाँ पर हो तो कोशिश करे एक्स्ट्रा जिस तरह कहा गया इजाफी रकात पढ़ने का वो इजाफी रकात पढ़े, और सूरह तौहीद हर रकात में पाँच पाँच मरतबा। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की ज्यारत जो कि खुद अपनी ख्वाहिश और तमन्ना से यहाँ हुए पढ़े, ज्यारत अमीनुल्लाह और जो जो ज्यारतें पढ़ सकता है, क्योंकि जो जब वहाँ आपको स्टे मिलता है वो पाँच दिन का तकरीबन या तीन दिन का चार दिन का, तो रोज़ाना आके जितनी ज्यारात पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। इसके बाद आसार हरम अमीरुल मोमिनीन, हम हरम में दाखिल हो गए, हमने ज्यारत पढ़ ली, आदम नू की भी ज्यारत से फारिग हो गए, नमाज ज्यारत से भी हम सबकदोश हो गए, अब हमें होश आएगा, अब जो है हम आसपास देखेंगे कि मौला अली के हरम के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इंशाल्लाह तफसील ये खुद एक अपना एक दर्स है कि आप जब हरम में दाखिल हो गए और मौला की ज्यारत पढ़ ली, अव्वलीन काम तो आपको यही करना है, सबसे पहले मौला की ज्यारत, आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम की ज्यारत, उसके बाद आपको आगे पीछे दाएं बाएं नज़र दौड़ानी है क्या क्या चीज़ें हैं। 50 से ज़्यादा उलमा की कबूर है वहाँ पे, मदारिस वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं इबरत आमेज़ जगहें मौजूद हैं जिनको देख के जिनके तारीख़ी पस मंज़र में जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कस्ब कर सकते हैं। इंशाल्लाह आसार हरम अमीरुल मोमिनीन यानी हरम अमीरुल मोमिनीन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसका तस्करा इंशाल्लाह आइंदा दर्स में होगा। उसके बाद इतराफ़ हरम मोमिनीन का तस्करा होगा। उसके बाद डिस्टेंट ज़ियारात जैसे कूफा में मस्जिद, ख़ुद कूफे की मस्जिद है, मस्जिद सहला है, और फिर दीगर असहाब अमीरुल मोमिनीन इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम सबको ज़ियारत इराक़ नशब अशरफ करने की तौफीक अता फरमा, हमारी ज़ियारात को कबूल फरमा, हमें अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, क़यामत के दिन हमें उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व आवान में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन।
النجم يا صاحب السماء النجم النجم